ओम शांति। बाबा बहुत सारी तो नहीं, कई मुरलियों में बाबा ने एक एजेंसी का नाम लिया हुआ है CID, जिसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अंत में ऐसा होगा कि CID के एजेंट्स आएंगे आपकी चेकिंग करने के लिए। तो हर देश की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसमें एक जो एजेंसी होती है उसका नाम होता है CID। ऑलमोस्ट लगभग जहां पर भी ब्रिटिश लोगों ने राज किया है वहां की जो एजेंसी है उसका नाम है CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो ये जो CID होती है, ये जो अंदर का इंटरफेयर जो होता है किसी देश का, उसके ऊपर ध्यान देती है कि देश के अंदर क्या क्या चल रहा है, सही गलत जो भी चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देती है। और कई एजेंसियां ऐसी होती है कि जो आउटर, मतलब जो देश के बाहर की जो काम चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देती है, एक देश दूसरे देश में क्या कर रहा है, उनका क्या प्लानिंग चल रहा है, जिसे गुप्तचर भी कह सकते हैं हम, डिटेक्टिव जैसे जेम्स बॉन्ड 007। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग एजेंसियां होती है जो इसके ऊपर काम करती है, लेकिन बाबा एक एजेंसी का जैसे बताया हमेशा नाम लेता है CID। तो ये पुलिस की ही एक एजेंसी, एक ब्रांच है जिसका नाम है, जहां पर पुलिस फेल हो जाती है किसी बात की तहकीकात करने के लिए, वहां पे जो ये काम CID को दिया जाता है, फिर CID उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके एकदम प्रॉपर डीप में जाकर उसके बारे में शोध करती है, बताती है। तो 27771 की मुरली में बाबा ने कहा है कि CID एजेंट अगर किसी देश में कोई दूसरा देश अटैक करता है तो वो अगर फेल हो जाते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है कि क्यों उस देश ने हमें अटैक किया, या हमको पता क्यों नहीं पड़ा इन एडवांस में ही कि वो देश हमारे पे अटैक करने वाला है, तो वहां की जो सीक्रेट एजेंसी है वो फेल हो गई, इसलिए उनको पता नहीं पड़ा कि वो देश हमारे पे अटैक करने वाला है। जैसे इंडिया और चाइना का वार हुआ था तो उस समय भी बताते हैं कि ऑलरेडी बताया गया था कि चाइना अटैक करने वाला है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से वो वार हुआ या जो भी हुआ उस समय इतने रेडी नहीं थे। तो ये 71 की मुरली में बाबा ने कहा है कि हमारा अगर नेत्र जो है, दिव्य नेत्र अगर हमारा साफ होगा तो हम अच्छे से देख पाएंगे, चीज को समझ पाएंगे उसको। तो परखने की शक्ति यहाँ पर बाबा ने जैसे बताई है, ये 71 की मुरली 27771। उसके बाद जो नेक्स्ट मुरली है 28874 की मुरली में बाबा ने कहा है कि जैसे जैसे आप इस ज्ञान में आगे बढ़ेंगे आपको प्रसिद्धि मिलेगी, सेवा का क्षेत्र बढ़ते जाएगा, तो लोग आपकी चेकिंग करने के लिए आएंगे अपनी सिद्धियों द्वारा, या उनके पास जो पावर्स है मंत्रों द्वारा आपकी चेकिंग करने के लिए आएंगे कि आप में सचमुच कितनी पावर्स है। और वो जो चेक करेंगे तो वो ऐसी परिस्थितियों में चेक करेंगे जब परिस्थिति ऊपर नीचे होगी, ऐसे नहीं कि आप योग में बैठे और उस समय आके आपका माइंड कंट्रोल चेक करेंगे कि सचमुच आपका माइंड कंट्रोल में है या नहीं है, लेकिन जब विषम परिस्थितियां होंगी, परिस्थिति खराब होगी, उस समय आपका माइंड कंट्रोल चेक करेंगे कि आप में कितनी स्थिति कैसी है, आप में कितनी शांति की शक्ति है, माइंड कितना आपका कंट्रोल में है। और जो थर्ड मुरली जो बाबा ने बताई है 24483 की मुरली में जो बताया बाबा ने, उसमें बाबा कुमारों से मिल रहे हैं, तो बाबा ने पूछा कुमारों से कि आप लोग रेडी हैं, तो उसमें बाबा ने कहा कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ऐसे ही किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, वो प्रूफ चाहिए होता है उन्हें, तो ये CID वाले आपकी चेकिंग करने के लिए आएंगे कि सचमुच आप रेडी है इस बात के लिए, या जो आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो आप में है या अंदर एक है, बाहर एक है, क्या है आपका। उसके बाद जो है 18/2/2008 की मुरली में बाबा जब युगलों के साथ मिल रहे हैं, उस समय भी बाबा ने कहा है कि क्या आप रेडी हैं इस चीज के लिए कि वो CID वाले आकर आपकी चेकिंग करेंगे। तो बाबा CID का नाम हमेशा लेते हैं, तो जैसे बताया क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है हमारे ब्राह्मण लाइफ में CID, जो आज का टॉपिक है ब्राह्मण जीवन में माया के CID। तो ब्राह्मण जीवन में माया के चोर इनकमिंग डोर CID कौन कौन से है, जहां से माया आ सकती है। तो पहले हम कुछ CID के बारे में देखेंगे कि जो CID के एजेंट्स होते हैं काफी एक्टिव होते हैं वो, और हर छोटी से छोटी बात का वो ध्यान देते हैं, शक करते हैं, हाँ, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान देते हैं। जैसे बताया कि उन्हें ये ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, जैसे बताया ना जहां पे पुलिस वाले फेल हो जाते हैं, नॉर्मल पुलिस वाले किसी बात का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फेल हो जाते हैं, तो वहां पे CID वाले आके फिर चेकिंग करते हैं कि, और उनका काम ही, वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, और जैसे किसी में जन्मजात गुण ही है शक करने का, ऐसा कुछ क्वालिटी है, तो ऐसे लोग जल्दी जाके CID में भर्ती होते हैं, कि उनमें स्पेशलिटी दी हुई एक तरह से हम कह सकते हैं, तो वो जाके चेकिंग करते हैं। तो हर बात की वो जो है चेकिंग बहुत सूक्ष्मता से करते हैं, हर बात में शक करेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, या ऐसा ही क्यों, जो भी है। तो जो माया के एजेंट्स जो आते हैं चेक करने के लिए, तो भी हर बात में जैसे बाबा ने कहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो माया और ज्यादा आती जाएगी, क्योंकि स्थूल से माया जो है सूक्ष्म में जाना शुरू हो जाती है। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि माया चमाट लगाती है, माया घुसा मारती है, माया कान से पकड़ती है, नाक से पकड़ती है, मुंह काला कर देती है, अलग अलग बाबा बताते हैं माया के लिए। तो जैसे जैसे हम ज्ञान में जितना आगे जाते जाते हैं तो ज्ञान भी सूक्ष्म होते जाता है, तो माया भी जो है सूक्ष्म रूप से आनी शुरू हो जाती है। कि बड़े रूप को तो हम पहचान रहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो सब पता पड़ गया हमें, ईर्ष्या द्वेष ये सब पता पड़ गया, लेकिन सूक्ष्म रूप में माया आनी शुरू होती है। और बाबा ने कहा है कि माया अंत तक छोड़ेगी नहीं, अंत तक माया आती रहेगी। तो सबसे पहले जो CID के एजेंट्स होते हैं उनका काम जो एक सूक्ष्म होता है, बहुत एक्यूरेट होते हैं, एक्यूरेसी जो उनकी है काफी होती है, हर छोटी छोटी बात में ध्यान देते हैं। तो माया के जो भी एजेंट्स आ रहेंगे वो ये चेक करेंगे कि छोटे से छोटी इनमें क्या कमजोरी है, कौन सी कमजोरी है जो हमें लग नहीं रहा है कि ये कमजोरी है, लेकिन वो कमजोरी है और माया वहां से आएगी। जैसे बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि आप जो है आगे का दरवाजा जो है मेन डोर जो है कई लोग बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो माया वहां पीछे के दरवाजे से भी आ जाती है, कई बार वेंटिलेशन से भी माया आ जाती है ऐसे। और जो दूसरे जो CID के जो एजेंट्स जो होते हैं वो गुप्त रूप में जैसे आते हैं, वो कभी अपने आइडेंटिफिकेशन बताते नहीं कि हम CID एजेंट्स हैं। तो माया के भी जो एजेंट्स आते हैं वो गुप्त रूप में आते हैं कि हमें पता भी नहीं पड़ता है कि ये सचमुच माया है क्या, हमें तो लगता है ये तो नॉर्मल संस्कार है, हमारा छोटा सा संस्कार है, ये तो कोई नहीं, हम कभी भी इसे जीत सकते हैं। हाँ, इनफॉर्मस हो तो उस तरह से होते हैं वो। और जो तीसरे जो होते हैं CID जो एजेंट्स जो होते हैं वो बहुत मीठी मीठी बात करेंगे एकदम भोलेपन में, कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है जैसे कुछ। हाँ, जैसे वो किसी अगर पान वाले की दुकान पर जाएंगे तो पान खाने वाले ग्राहक के रूप में जाएंगे, किसी के घर में जाएंगे तो सेल्समैन बन के जाएंगे, ऐसे अलग अलग रूप जो है ये करके जाते हैं। जैसे रामायण में भी बताते हैं कि जब राम और रावण की लड़ाई होने वाली थी तो रावण के जो दो गुप्त ये थे गुप्तचर असुर और शक, वो वहां पर गए थे राम की सेना में बंदर और भालुओं का ये सब वेश धारण करके, तो विभीषण ने उन्हें पहचान लिया था। तो ये जो है एकदम ऐसे गुप्त रूप में आएंगे और मीठी मीठी बात करेंगे भोले बन के, कि हमें कुछ पता ही नहीं पड़ेगा कि ये माया के एजेंट से कि क्या है करके। ये जैसे बाबा ने भी कई मुरलियों में कहा है कि अंत में ऐसे भी लोग आएंगे जो वाइट ड्रेस पहनकर आएंगे और बैज लगाकर भी आएंगे, लेकिन आप जो है आपके ज्ञान के द्वारा आप परख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सचमुच ज्ञानी आत्मा है कौन आत्मा है। जैसे आजकल बहुत सारी अलग अलग पार्टियां बनी हुई है तो हम उनके ज्ञान पर से ही पहचान सकते हैं कि ये सचमुच किस मतलब ये बाबा का बच्चा है या कौन है, या कोई माया तो नहीं आई हुई है, क्योंकि उनका भी काम होता है अपनी तरफ खींचना। तो जैसे वो CID के एजेंट्स जो होते हैं वो अगर किसी ने कुछ गुनाह किया हुआ है, कोई दोषी है, तो उसको पकड़ कर लेके जाते हैं। तो माया के जो एजेंट्स है वो छोटे छोटे इन बातों को देखते हैं कि जहां से हम इन्हें पकड़ सकते हैं। जैसे बताया ना कि जैसे अगर कोई मैच है, हॉकी का मैच है या फुटबॉल मैच है, क्रिकेट नहीं, तो उसमें जो ये होता है कि दोनों टीम के अगर एक एक पॉइंट है समझिए, या एक टीम आगे है एक टीम पीछे है, तो जो टीम वो टाइम खत्म होने वाला है, तो जो टीम पीछे है वो ये सोचती है कि मैं कैसे कम से कम इक्वल अप पे तो आ जाए मैच टाई करते हुए, और जो टीम थोड़ी आगे है वो सोचती है कि हम अगर दो पॉइंट है हमारा तो हम कैसे 3 पॉइंट ले सकते हैं, कैसे हम 4 पॉइंट बढ़ा सकते हैं अपने पॉइंट्स। तो जैसे जैसे टाइम नजदीक आते जाएगा तो माया और जैसे बाबा ने कहा बढ़ती जाएगी सूक्ष्म रूप में। तो माया ये कोशिश करती कि कैसे हम कहीं ना कहीं से कुछ लूप होल ढूंढ ले, कुछ ऐसा छोटी से छोटी गलती इनकी ढूंढ ले जहां से हम इन्हें दोबारा अपने साइड में खींच सके, क्योंकि हम 63 जन्म माया के साथ रहे ना, और अब एक जन्म के लिए दूसरी ओर जाएंगे तो उसको अच्छा थोड़ी लगेगा। बाबा कहते हैं ना कि उसके ग्राहक जा रहे माया के, तो माया को अच्छा नहीं लगता है। तो जो ये CID एजेंट्स होते हैं काफी मीठी मीठी बातें करके ये करते हैं। तीसरा जो CID एजेंट्स होते हैं ऐसी बात करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके माइंड को कंफ्यूज करेंगे। जैसे एक ही परिवार के 4 लोग हैं तो चारों लोगों को अलग अलग लेकर जाकर ऐसी बात पूछेंगे कि चारों लोग अलग अलग जवाब देंगे और उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसने क्या कहा उसने क्या कहा। और अगर उनका जवाब सही भी है, जैसे एक अच्छी मूवी आई थी दृश्यम अजय देवगन की, उसमें जो बताया गया कि वो चारों इतना वेल प्लान्ड होते हैं छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, कि एक जो कहता है दूसरा भी वही कहता है, तो वहां वो एजेंट्स भी जो CID के पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब एक ही तरह के कैसे जवाब दे रहे हैं करके। तो अगर हमारा बुद्धि अगर हमारी क्लियर है, हम अगर प्रॉपर बाबा की धारणा पे ज्ञान पे श्रीमत पे चल रहे हैं, तो एक जो व्यक्ति कहेगा दूसरा व्यक्ति भी वही कहेगा, दूसरा कुछ अलग नहीं कहेगा, क्योंकि कई बार एक व्यक्ति एक जवाब दे रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरा जवाब दे रहा है, तो माया जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करती है हमारे माइंड में, और कन्फ्यूजन क्लियर क्रिएट होने के बाद में हमारा जो नेत्र जो है, हमारी आंख जो है, जैसे कहा ना बुद्धि, हम जैसे कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, तो बुद्धि में हमारे संशय लेके आती है माया, और फिर अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है। और जो सीआईडी के एजेंट जो होते हैं कभी एक साथ में नहीं आते, वो अलग अलग आएंगे, एक आएगा दूसरा आएगा तीसरा आएगा, अलग अलग रूप में आएंगे। तो माया के भी जो एजेंट्स आते हैं, अगर एक फेल हो गया तो भी उससे बड़े वाले को, थोड़ा पावरफुल वाले को भेजेंगे, वो फेल हो गया तो और उसके तीसरे वाले को, थोड़ा और पावरफुल वाले को भेजेंगे। तो माया के एजेंट्स जो भी ऐसे एक साथ में कभी नहीं आते, हमेशा अलग अलग इसमें आते हैं। तो ये कुछ देखा हमने पॉइंट्स कि जो वो एजेंट्स है और ये एजेंट्स है माया के। गुप्तचर जो है एक की जानकारी दूसरे को देते हैं, जैसे जैसे मतलब एक देश के गुप्तचर दूसरे देश में चलते रहते हैं कि उनके देश में क्या चल रहा है वो जानने के लिए। लेकिन सीआईडी वाले जो होते हैं क्राइम होने के बाद में जो होता है उसके बाद जाकर चेकिंग करते हैं, या गवर्नमेंट का जब उनको स्पेशल ऑर्डर होता है उसके बाद जाके चेक करते हैं। सीआईडी जो है जैसे बताया किसी देश के अंदर काम करती है, और जो देश की जैसे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, तो रॉ अंदर काम नहीं करती इंडिया के, रॉ जो है इंडिया के बाहर काम करती है। ऐसे ऐसे हर एक के अलग अलग एजेंसी होती है, लेकिन जो सीआईडी जो बाबा कहता है कि वो अंदर की ही एजेंसी है और अंदर के लोगों के ऊपर वो कार्य करती है कि इनका अंदर क्या चल रहा है। जैसे गवर्नमेंट का अगर यहाँ पर भी कई बार आते हैं सीआईडी वाले, हमेशा आते रहते, पिछले साल भी एक आए थे जयपुर से, वो चेक करने के लिए आए थे, भाई आपके यहाँ से इंटरनेशनल कॉल बहुत होती है, तो क्यों आपके यहाँ से इंटरनेशनल कॉल होती है? तो जब बुलाया गया तो हमने बताया कि उस समय नेपाल का ग्रुप आया था पिछले साल या दो साल पहले, तो बोले थे यहाँ पे नेपाली क्यों कॉल हो रहा है आपके यहाँ से, तो उनको बताया था कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे सेवा में लोग आए हुए और इसलिए नेपाल ज्यादा कॉल होता है। जैसे कई बार ज्ञान सरोवर की चेकिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि सारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो आईएसडी कॉल्स होता है वो ज्ञान सरोवर से होता है बाबा के सीजन में, तो हमेशा उनका डाउट होता है कि ये यहां से क्यों जाते हैं, यहां से इतना कॉल क्यों होता है। तो उनके साथ में जो लोकल एजेंट्स भी होते हैं, जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट का हो गया लोकल, वो भी उनको तो पता होता है कि भाई इनके यहाँ ऐसी संस्था है इसलिए कॉल होता है, और टाइम टू टाइम वो हमेशा चेक करने के लिए आते ही रहते हैं हमेशा ये ऐसे। तो वो जो होता है इंटरनल मैटर चेक करने के लिए आते हैं। तो सीआईडी का काम जो है अंदर का काम होता है, और जो गुप्तचर जो होते हैं लगभग जो होते हैं वो एक देश का दूसरे देश में जानने के लिए या ये करने के लिए होते हैं। जैसे ऋग्वेद में भी बताया गया कि वरुण देव जो है उसे जो है गुप्तचरों का मेन बनाया गया है, वरुण माना वायु, क्योंकि वायु सब जगह होती है, तो वो ये देखती है कि कौन क्या कर रहा है, क्या सही कर रहा है गलत कर रहा है, तो वो काम बता के जाके फिर भगवान को बताते, ऐसे बताया गया ऋग्वेद में ऐसे। तो वो काम जो है उसमें वो करता है, वरुण देव को मेन बनाया गया उसका। तो अब हम देखेंगे कि ब्राह्मण जीवन में जैसे माया के एजेंट्स जो आते हैं तो कौन से रूप में आ सकते हैं या आते हैं हमारे पास में, क्योंकि बड़े रूप को तो हम पहचान रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है मालूम पड़ रहा है, लेकिन छोटे छोटे रूप को हम जानने की देखेंगे कि ऐसे कौन से छोटे छोटे रूप है जो ब्राह्मण लाइफ में आके हमें माया अपने पास हमें खींच सकती है। तो जैसे बताया जेम्स बॉन्ड 007, तो हम माया के एजेंट देखेंगे जेम्स बॉन्ड 008। तो जो ये जेम्स बॉन्ड 007 है ये जो रशिया का था, वो रशिया का आईएसडी कोड जो है 007 है, रशिया का आईएसडी कोड है 007, और जेम्स बॉन्ड जो है रशिया का था इसलिए उसको 007 बोलते हैं, जेम्स बॉन्ड 007। कई लोगों को ये बात बता, हाँ हाँ एजेंट था ना जेम्स, सचमुच था ना जेम्स बॉन्ड तो। तो माया के एजेंट देखेंगे 008 क्या है। तो सबसे पहला जो माया का जो एजेंट है वो है रोब, कि हम गुस्से को तो हमने कंट्रोल कर लिया, पता पड़ गया कि ये गुस्सा है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन रोब जो करने की आदत होती है हमारी रोब कोई जरूरी नहीं है कि हम दिखा के ही करते हैं, बाहर से ही दिखाते हैं, अंदर से भी अंदर की फीलिंग होती है। और रोब हम उस समय करते हैं कि जब हमें किसी से ईर्ष्या होती है, कोई हमारे से आगे जा रहा है तो हम उस पर रोब जताने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है ये ठीक नहीं है, दूसरों के साथ में जैसे बाबा ने कहा ना कि रेस करो रीस नहीं करो, लेकिन हम जहाँ पे रीस करने की रीस आ जाता है हमारे मन में तो हम वहाँ पे रोब जबराना शुरू करते हैं, या किसी को हम गिराना चाहते हैं कि ये ठीक नहीं कर रहा है और हम उसके आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे बताए कोई हमारे से आगे जा रहा है तो हम उसको उसके बाद रोब जताने की कोशिश करते हैं, बड़ों के पास जाके बताएंगे कि ऐसे कर रहा है ये ऐसे कर रहा है करके चुगली करने की। रोब अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति रोब दिखाते हैं, रोब माना जैसे बताया कि बड़ों के पास जाके कंप्लेंट करते हैं हम कि ये ऐसे कर रहे हैं, नहीं रोब दिखाना भी होता है लेकिन हम बड़ों के पास जाके ये भी रोब दिखाते हैं कि हम उनसे सीनियर हैं, हम उनसे पहले आए हुए, ये तो अभी अभी आया हुआ है इसे तो कुछ पता, वो दबाना भी होता है तो नहीं, ये रोप का सूक्ष्म बता रहा हूँ ना मैं, हम क्या बताया मैंने, हम सूक्ष्म इसमें जा रहे कि हम रोप दूसरे बड़ों के पास जाके ये बताते हैं कि एक तो हम सामने सामने रोप दिखा रहे उस व्यक्ति पे कि आप ऐसे नहीं करो ऐसे करो, बराबर। उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है तो हम बड़ों के पास जाके रोप दिखाएंगे कि हम तो इससे सीनियर है, हम इससे बड़े हैं, और अभी अभी आए आपने। हाँ, बड़ों के सामने हम उसको रोप नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जाके कंप्लेंट कर रहे हैं इसके ऊपर रोप दिखाने के लिए। तो वो भी एक रोप का ही एक प्रकार मैं जैसे मानता हूँ। जैसे भी लास्ट वीक मुरली में बाबा ने कहा था ना वरदान में कि ब्राह्मणों को हम जींस के साथ में ईर्ष्या क्यों होती है कि वो आगे जा रहा है जो भी है, तो अगर आपको उसके बारे में बताना है बड़ों को तो आप न्यूट्रल वे में जाके बताओ उसके कि ये ऐसे ऐसे सचमुच अगर कोई गलत कर रहा है, क्योंकि हम भी सेवा में होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती है। हम शुभ भावना तो बोलते हैं हर एक के लिए, भाई योग में सबको सकाश दे रहे हैं शुभ भावना का, लेकिन प्रैक्टिकल में हम जब किसी के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो कितनी हमारी शुभ भावना है। मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली मेरा ये है कि अगर किसी के साथ भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं उस व्यक्ति को 4 बार 5 बार 10 बार बोलूंगा, भले उसके साथ में रिलेशन खराब हो जाए, उस व्यक्ति को लगे कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है, गलत कर रहा है। लेकिन जहां पे हमें लगता है कि हम सही है तो मैं ऐसे करता हूँ, उस व्यक्ति को 4 बार 5 बार 10 बार बोलेंगे। उसके बाद में नहीं होता है तो उसके जो फ्रेंड सर्कल वाले लोग हैं, जो उसके नजदीकी लोग हैं, उनको बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे है, उसके बाद में समझाओ उसको। नहीं होता फिर आगे का थर्ड स्टेप होता है सीनियर के पास जाना करके। लेकिन हम बिना किसी को बताए अपना ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम बड़े हैं तो ठीक नहीं है। किसी ब्राह्मण आत्मा को उसकी स्थिति से गिराना, किसी को पूरा ब्राह्मण जीवन से ही बेदखल कर देना, ऐसा हमने कुछ किया और वो ज्ञान छोड़ के चले जाता है, ये बहुत बड़ा पाप है। ये क्योंकि ज्ञान में आने के लिए कौन कितनी मेहनत करता है। अभी 2 दिन पहले भी एक भाई बता रहा था कि यहाँ पे एक एक का अनुभव पूछो तो कोई साइकिल पे बेंगलोर से कहाँ हैदराबाद गया, अयप्पा मंदिर गया, कहाँ कहाँ कितने कितने जाके और फिर बाबा के बच्चे बने। और हम कुछ ऐसा कार्य करें, हमारा स्वार्थ है उसमें। जैसे पता हम रोप भी अगर किसी पे दिखाते तो हमको ईर्ष्या होती कि वो हमारे से आगे नहीं जाए, हम अपना सुपेरिटी दिखाना चाहते हैं कि भाई हम उनसे सुपर है, हमारे मन में होता है कि इसको हटा के हम आगे बढ़ जाए। तो भी हाँ, ये भी होता है कि भाई ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है, एक है ना, एक न्यूट्रल वे में आप करो तो उसके अगर हमारी सचमुच शुभ भावना है तो अपने आप उसको आज ना कल टचिंग होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमने बताया लोगों को, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बात करना ही छोड़ दिया हमारे साथ में, और थोड़े समय के बाद उनको खुद फीलिंग हुई कि नहीं सचमुच ये गलत था, हम गलत कर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने आके सॉरी बोला। हम सचमुच अगर शुभ भावना रखते हैं किसी के लिए तो मेरा ये कहना है कि आप पहले उस व्यक्ति से बात करो, नहीं होता है तो फिर आप बाबा से बात करो सेकंड स्टेप में, और उसके बाद उसके लिए शुभ भावना शुभकामना रखो। जैसे एक आत्मा थी आके बहुत ये करती थी, हमेशा परेशान करती थी, तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा, बहुत उसको बताया ये किया, फिर आखिर में मैंने कहा कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी इसके लिए योग ही करना पड़ेगा। तो मेरा ये है कि मैं तुरंत योग करना शुरू कर देता हूँ तो मालूम तो पड़ेगी इसके साथ में हिसाब किताबें करके तो उसके लिए योग करना शुरू किया और बाबा को बताया मैंने कि भाई ऐसा कुछ करो कि ये दोबारा जो है यहाँ पे नहीं आनी चाहिए आत्मा, ऑफिस में नहीं आनी चाहिए। और ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ विद इन 1 मंथ के अंदर कि उसका ऑफिस में आना बंद हो गया, नेचुरली इंसिडेंट हो गया और कि उसका ऑफिस में आना बंद हो गया। अभी भी मिलती है लेकिन ऑफिस के अंदर नहीं आएगी, ऑफिस के बाहर से ही काम चलते रहते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा तो अगर सचमुच हमारे अंदर किसी के लिए शुभ भावना शुभ कामना है तो हम जो है किसी पे रोब नहीं दिखाएंगे। जैसे अभी इंग्लिश में भी हमने सुना ना कि पता है हरेक का स्वभाव संस्कार होता है, आप प्यार से एक बार बताओ, दो बार, और सामने सामने। मैं ऐसा समझता हूँ कि बजाय इसकी हम किसी के पीछे जाके किसी की कंप्लेंट करें, जैसे बड़ी दादी के पास, दादी प्रकाशमणि के पास अगर कोई किसी की कंप्लेंट लेके जाते थे या बताते थे तो दादी दोनों को बुलाती थी कभी भी, और सामने सामने बैठ के वेरीफाई कराती थी। ऐसा नहीं कि एक ने कहा और दूसरे ने दादी ने मान लिया हाँ चलो ठीक है, ऐसा नहीं करके, फिर ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। तो अगर सचमुच हमारी शुभ भावना है, हम 4 बार 5 बार बोलेंगे उनको सामने सामने। जैसे मेरे साथ में भी एक इंसिडेंट हुआ था थोड़े समय पहले अभी, लेकिन हमने उसी प्रकार से हैंडल किया था। और जो भी है फिर आप सच्चे दिल से बाबा को बताओ, बाबा बैठा हुआ है उसका आपकी मदद करने के लिए। बाबा हमेशा कहते हैं ना सच्चे दिल पे साहेब राजी, जो बाबा कहता है कि रात को सोने के पहले जो चार्ट दो बाबा को, तो चार्ट में यही चेक करना होता है मुझे ऐसा लगता है। जो मैंने कहा कि अगर आप रात को सोने के पहले चार्ट देंगे बाबा को तो धर्मराजपुरी में जाने से बच जाएंगे हम। तो उस चार्ट में ये चेक कीजिए कि हम दिन में कितने लोगों से मिले, क्या क्या बात हुई या कुछ अप डाउन हुआ, तो उसके लिए सचमुच रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं या वो एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है या मेरे संस्कार रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से, तो पहला हो गया रोब जो हो गया, दूसरा जो इसमें है लॉ, लॉ अपने हाथ में लेते हम। अगर किसी के साथ में हमारा अनबन होता है, कुछ ये होता है, तो हम ये सोचते हैं कि मैं ही इसको ठीक करूंगा। बड़े तो कुछ कर नहीं रहे, बड़ों को बता के सब हो गया, अभी तो बस हम ही ठीक करेंगे करके। हम तो विश्व कल्याणकारी ना, इसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे हम। कैसे ये नहीं चेंज होता है हम देखेंगे करके। तो हम लॉ अपने हाथ में लेते हैं। तो बाबा ने कभी भी कहा कि लॉ अपने हाथ में नहीं लेना है। जैसे हमने कोई लॉ अपने हाथ में लिया या कुछ किया, तो बड़ों ने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, समझिए कि आपने लॉ क्यों अपने हाथ में लिया, या किसी ने कुछ कहा नहीं, तो हमारी हिम्मत बढ़ती जाती है फिर कि देखा हम सही थे ना, इसलिए किसी ने हमको कुछ कहा नहीं, या लोग हमारे से डरते हैं इसलिए। नहीं, यहाँ कोई किसी से डरता नहीं और कोई किसी से कुछ नहीं है। सबको ये सोचते हैं कि भाई इसका हिसाब किताब है, ये कर रहा है ये जाने, हम क्यों इनके बीच में इंटरफेयर करें। क्योंकि ऐसे शुभ भावना वाले बहुत कम लोग होते हैं कि जाके सचमुच आपको बताएं कि आप गलत कर रहे हैं करके। तो हम जो लॉ अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं, हाँ वही ना, अगर आपने सच्चाई है आप में, तो आप कभी भी दुश्मनी करने के लिए भी ये नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने बताया लोगों को, लोगों ने बात करना बंद कर दिया, तो उसके लिए कुछ जरूरी नहीं। अगर आपकी सचमुच शुभ भावना है तो आप बताएंगे उनके, लेकिन बाद में रियलाइज होता है ना, बाबा बैठा हुआ है वो देखने के लिए, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बाबा बैठा हुआ है देखने के लिए। हमें उसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बाबा को पता कि आप फ्री हो जाओ उस तरह। मुझे ऐसे लगता है, जरूरी नहीं कि ये बात सबके लिए एप्लीकेबल हो, मुझे ऐसे लगता है ऐसे। तो दूसरा, जो हम लॉ अपने हाथ में लेके उनको बताना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में लॉ ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे हमने इंग्लिश में भी सुना कि हमें पता है हर एक का पार्ट है ड्रामा में ना। जैसे मेरा पर्सनल बताता हूँ, मेरी एक्यूरेसी 0.001 mm की एक्यूरेसी है, और मैं जिनके पास मैं सेवा करता हूँ उनकी 1 feet भी एक्यूरेसी नहीं, 1 meter भी एक्यूरेसी नहीं है उनकी। मुझे इतना एडजस्ट करना पड़ता है उनके साथ में करने के लिए, लेकिन करते हैं हम एडजस्ट, क्योंकि भगवान हमको पता है ना कि हर एक के संस्कार अलग अलग है। हर कोई राजा नहीं बनने वाला है जाके। कोई काम एक व्यक्ति 2 घंटे में कर रहा है, और वही काम वो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति 4 घंटे में कर रहा है, आप क्या करेंगे उसके लिए? कोई कर ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? कोई बात नहीं, आप शुभ भावना रखिए। जैसे एग्जांपल देते हैं ना कि भाई कोई अगर ये है, एक गधा है और एक घोड़ा है, आप दोनों को एक जैसे रेडी करो ठीक से, लेकिन गधे के जो संस्कार होंगे थोड़े समय के बाद संस्कार अपने आप निकलेंगे, वो आज नहीं तो कल अपने आप अपने ग्रुप में ही जाके मिलने वाला है। हमारा काम है हर एक के प्रति शुभ भावना रखना। मैं जो समझता हूँ कि आप बाबा को बता के फ्री हो जाइए, उसके बाद में बाबा बैठा उस व्यक्ति के लिए आप योग करना शुरू कीजिए। अगर सचमुच आप उसके लिए शुभ भावना चाहते हैं कि व्यक्ति बदल जाए, कहीं ना कहीं से कुछ होता है कि या तो आप उस व्यक्ति से साइड हो जाएंगे या वो व्यक्ति आपसे साइड हो जाएगा। उसके संस्कार वैसे ही रहेंगे, संस्कार बदलेंगे नहीं, क्योंकि संस्कार इतना चेंज होना इजी नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा कि वो ही आपसे या तो साइड हो जाएगा। तो तीसरा जो दूसरा जो बताया, लॉ हम अपने हाथ में लेते हैं, थर्ड वाला भी बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें हम इस पॉइंट जो है इसमें हम दिखाना शुरू करते हैं लोगों के ऊपर, जो भी करते हैं एफ फैमिलियरिटी, हम फैमिलियरिटी में आना शुरू हो जाते हैं। ये ब्राह्मण परिवार है, एक साथ में तो मिलना ही है, लोगों के कांटेक्ट में तो आना ही है, लेकिन किसी के कांटेक्ट में आना अलग बात होता है और फैमिलियरिटी में आना अलग बात होता है ना। कि हम किसी से एक बार मिले, दो बार मिले, कई बार हम देखते हैं लोगों को, खास करके विदेश के भाई बहनों से कोई मिलता है, एक बार मिले दो बार मिले तुरंत उनका नंबर लेना शुरू कर देंगे, फिर ईमेल आईडी लेना शुरू कर देंगे, फिर उनसे ये करेंगे, फिर आप कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, हम भी उसी ग्रुप में आ रहे हैं। तो अननेसेसरी कॉन्टेक्ट किसी से बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, परिवार है आना चाहिए, जरूरी है परिवार में। एक पापा कहता ना, ब्राह्मण परिवार है, हम सन्यासी तो नहीं है कि छोड़ के जंगल में चले जाए, सबके साथ में कॉन्टेक्ट में आना है, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही कॉन्टेक्ट बढ़ाए। एक ही कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहे हैं, आपकी सेवा है वह, लेकिन उसमें न्यारा प्यारा रहना भी हमें सीखना चाहिए कि हम। हाँ देखो, बिना ड्रामा इसके अकाउंट के कोई कुछ भी नहीं होता। जैसे बना, बिना अकाउंट के कोई आपको ओम शांति भी नहीं कहेगा। अगर कोई आपको गलती से भी ओम शांति बोल के जा रहा है, माना कुछ ना कुछ अकाउंट है आपका, लेकिन वो कॉन्टेक्ट बढ़ता है। कोई बढ़ाता नहीं है, कोई नहीं बढ़ाता है, कोई किसी से कॉन्टेक्ट बढ़ाता नहीं है। जहां पे जिसका जो अकाउंट होता है ना, ये ऐसे नहीं है, मुझे ऐसे नहीं लगता। जहां पे हमारा हिसाब किताब है आप खींच के लेके जाएंगे, लेकिन जहां पे हमें लगता है कि सचमुच अगर ये ड्रामा कार्मिक अकाउंट है हमारा, अगर आप क्लियर हैं उस व्यक्ति के साथ में, बाबा के साथ क्लियर है, तो अपने आप आपको टचिंग होती है, और फिर आप उसके लिए योग करना शुरू करके उस अकाउंट को खत्म कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप खत्म नहीं कर सकते, अकाउंट बढ़ता है, माना कि अकाउंट बढ़ता है, अपने आप ले होता है, लेकिन है ना, इतने सारे लोग हैं, हम उन लोगों के पास क्यों नहीं जा रहे, उसी एक व्यक्ति के पास क्यों जा रहे हैं हमारा। कुछ ना कुछ हमारा अकाउंट है कहीं ना कहीं, जब चाहे पॉजिटिव वे में हो चाहे निगेटिव वे में हो। तो अगर आपको सचमुच लगता है कि आपका कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है या ऐसा कुछ है, तो आप उसके लिए योग करके उस चीज को जो है आप खत्म कर सकते हैं उसको। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर कोई कॉन्टैक्ट बढ़ाता ही है करके, जरूरी नहीं ऐसा कोई। तो एक जो है फैमिलियरिटी, हम जितना फैमिलियरिटी में आते जाते हैं लोगों के, तो ये भी माया के आने का एक चोर गेट है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो है जाने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें लिया हुआ है बीमारी, अगर कोई हमें बीमारी वगैरह होती है तो बीमारी तो ऐसे ही कि इसमें अच्छी अच्छी जो ब्राह्मण आत्मा है, योगी तो आत्मा है, वो हिल जाती है कि बीमारी में कोई हमें पूछने नहीं आया, किसी ने ये नहीं किया हमारे साथ में, कोई हमको ध्यान नहीं देता है, ये इसी डॉक्टर के वजह से ऐसा हो गया, अगर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते ना तो ठीक होता, ये डॉक्टर ही ऐसा है करके, कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ हिसाब किताब है, इसलिए हम उसी डॉक्टर के पास गए हिसाब किताब चुकतू करने के लिए ना। बीमा जैसे बता, बिना हिसाब किताब के कुछ नहीं होता है। तो अगर किसी को बीमारी होती है तो भी माया के आने का चोर गेट है। जैसे एक हम सेंटर पे थे, उस समय एग्जांपल सुना था, एक भाई था दूसरे कास्ट का था और काफी अच्छा चलता था ज्ञान में करके, बहुत समय तक चला, 4-5 साल तक। और एक बार वो बीमार हो गया, तो बीमार हो गया तो उसको कोई सेंटर वाला पूछने के लिए गया नहीं, तो पूछने के लिए गया नहीं तो उसके इनके रिलेटिव्स में ही किसी ने 3-4 दिन उसको भोजन वगैरह ला के दिया, तो उसके मन में वहीं से शक आ गया, ये हो गया कि देखो ये लोग तो ऐसे ही है, परिवार परिवार बोलते हैं और कोई पूछता नहीं, कोई ये नहीं करते। फिर वो बाद में ज्ञान छोड़ के चले गया फिर वैसे तो ऐसे नहीं है। तो बीमारी अगर किसी को आती है तो उसमें भी हम अच्छे अच्छे जो है ब्राह्मण आत्माएं हिल जाती है। तो ये भी एक माया के आने का चोर गेट है। जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैं ऐसे मानता हूं कि ब्राह्मण आत्मा जिंदा है तो भी अच्छा है, सेवा कर रही है, शरीर छोड़े तो भी एडवांस पार्टी में जाके सेवा करेगी, उसमें जाके हमें टेंशन लेने की या रोने की कोई जरूरत नहीं, मतलब ये ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया करके। तो ये हो गया बीमारी, अगर बीमारी होती है तो उसमें हम माया के आने का एक चोर गेट है ये। इसके बाद नेक्स्ट जो है साधन, हमारे पास साधन हम देखते हैं, इसके पास ये है, उसके पास वो है, कई बार लोग जबरदस्ती देके चले जाते हैं, नहीं नहीं आप यूज करो, बाबा की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, नाम बाबा का होता है, लेकिन उनके अंदर एक्चुअली वो इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं अपना कि भाई हम अगले बार इनके पास आए तो हाँ भाई ये हमको देके गए थे इस तरह से ना, जैसे कहते फैसिलिटी, हाँ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देंगे, एक्स्ट्रा हमारी केयर करेंगे, एक्स्ट्रा ध्यान देंगे करके, ये तो सब बाबा का ही है करके। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई आत्मा उसी से देती है, कई बार हम देखते हैं कि लोग कुछ अच्छी सेवा भी करते हैं, ये भी करते हैं तो प्यार से देखे जाते हैं, लेकिन वो बाद में कभी पूछेंगे नहीं उस बात के लिए, कभी उस तरह से जताने की कोशिश नहीं करेंगे, जिक्र नहीं करेंगे। कई लोग होंगे वो शूज देके गए, फिर देखेंगे तो आपने वो शूज पहना नहीं, आप वो शॉल यूज नहीं करते, कभी देखा नहीं, कहाँ गया शॉल करके। तो ये जो है साधन, जैसे हम कई बार देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं उनको मोबाइल चलाना भी नहीं आता ठीक से, लेकिन वो एंड्रॉयड वाला मोबाइल लेके घूमते हैं, करते हैं और फिर दूसरों को परेशान करते हैं, वो बोलेंगे नहीं हमारे बच्चे ने दिया, हमारे इसने दिया उसने दिया, एक्चुअली अंदर हमारे ये है कि भाई सब लोगों के पास है, हमारे पास भी होना चाहिए, हम भी लोगों को दिखाए भाई हम भी अपडेट है, हमारे पास भी कमी नहीं है करके। नॉर्मल कीपैड वाले भी फोन मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करके, लेकिन खुद हमारे अंदर इच्छा होती है ना, जैसे बाबा कहते इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, तो साधनों के रूप में माया आती है। जैसे बाबा ने कहा है कि अंत में आपके पास, जैसे आज गाड़ियों की लाइन है तो अंत में हेलीकॉप्टर्स की लाइन लगेगी आपके पास में, लेकिन अगर आपने खुद के प्रति उन चीजों को यूज किया तो फिर वो आपको नुकसान करेगी। अगर सचमुच आप सेवा के प्रति लगा रहे कोई भी साधन है तो फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो है साधन, अगर हमारे पास आते हैं और अगर हम उन्हें बिना इसके सेवा के यूज कर रहे हैं तो भी एक माया के आने का चोर गेट है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आगे बढ़ते जाते हैं। फिर तीसरा जो है नेक्स्ट जो है इसमें नेम फेम, हमें नेम फेम चाहिए होता है। जब हम देखते हैं स्टार्टिंग में आते हैं, चाहे कहीं पर भी हो, यहाँ हो या बाहर हो, तो हम सब बाबा करा रहा है, सब ये हो रहा है ठीक है करके, फिर इसको उसको देखते हैं कि इसको तो ज्यादा नाम मान शान मिल रहा है, हमको तो कोई पूछता ही नहीं, हमको कोई ये नहीं करता है, फिर जो होता है हम माइंड जो है हमारा डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है कि ऐसा क्या करे कि लोग हमें भी जाने पहचाने, हमारे भी वाह वाह हो करके। तो बाबा ने कहा है कि संगम पे आप जितना गुप्त रहो, चाहे ज्ञान योग धारणा थे किसी भी, इसमें जितना गुप्त रहो उतना अच्छा है, लेकिन हम इसको उसको देख के नाम मान शान आने में ये करना शुरू हो जाता है कि हमें भी मिलना चाहिए। फिर कई बार लोग होता है कि लोग अपनी सेवाएं छोड़ के दूसरे की सेवा में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, कोई आएगा बड़ा व्यक्ति है तो उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे कि उसे नाम मान शान मिलना होता है, और फिर बड़ों के साथ भी कॉन्टेक्ट होना शुरू हो जाता है कि भाई हाँ ये उसके साथ में घूमता है, तो उस तरह से भी हम रोप जरा बता सकते हैं कि भाई इसकी बड़ों के पास पहचान है, ये उनके साथ में आगे पीछे आगे हाँ ऊंचा व्यक्ति है करके। हाँ क्योंकि अंदर से इच्छा है ना, नाम मान शान मान के दूसरों से आगे जाना चाहता है, दूसरों से ईर्ष्या होती है, खाली है ना, अंदर कुछ ना कुछ खाली है तभी तो बाहर भाग रहे, ज्ञान योग से भले खाली है। किसको? किसी की विशेषता अलग है, किसी को सेवा के वजह से लोग जानते हैं पहचानते अलग बात है। बाकी कई लोगों का ऐसे कि हम इतने साल हो गए हमको तो कोई जानता ही नहीं पहचानता नहीं, और ये अभी अभी आए, इन्हें सब साधन मिल रहे, इन्हें सब जानते पहचानते, तो वो ठीक नहीं है। फिर वो जितना हम नाम मन शान के चक्कर में जाएंगे तो ये माया के आने का एक सूक्ष्म गेट है, चोर गेट है, जहां से माया आके हमें अपने पास खींच के लेके जाएगी। तो जहां तक हो सके संगम पे गुप्त रहना अच्छा है। जो आपको सेवा दी है बाबा ने, सेवा भी करते हैं तो ऐसी सेवा करो कि किसी को पता भी नहीं पड़े। जैसे बाबा कहते हैं ना, एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं पड़े, जैसे दान के लिए कहते हैं। जितना आप हर चीज में गुप्त रह के सेवा कर सको, करते कई लोग करने वाले करते ऐसे भी सेवा। एक होता है कि कोई डायरेक्ट आपके पास देके चले जाए, और कई बार लोगों को पता है कि कोई कोई चीज लेता नहीं है तो अपने आप वो नाम लिख के गपचुप ट्रांसपोर्ट में देके चले जाते, वो चीज आपके पास आ जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि किसने दिया करके, जो अपने आपको दिखाना नहीं चाहते। तो ये जो नाम मान शान का चक्कर होता है तो वहां से भी माया जो है आनी शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, लोभ। लोभ की भी अलग अलग स्टेजेस होती है। लोभ तो हमें पता है, लेकिन जैसे सूक्ष्म लोभ कहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना मुरली में कि कई बड़े बड़े घरों की जो बच्चियां होती है वो भी होती हैं कि कोई चीज देख ली और उठा के खा लिया करके। तो लोभ होता है हमारे मन में कुछ ना कुछ, एक चीज मिल रही है हमारे पास ऑलरेडी है लेकिन फिर भी नहीं एक्स्ट्रा लेके रखे ना, शायद आगे मिले ना मिले, ऐसा हमारे मन में लोभ हो जाता है। एक बार यहाँ पे कुछ फ्रूट मिल रहे थे, आम मिल रहे थे, 6-6 आम जैसे सीजन में मिलते हैं। तो एक भाई था वो मुझे कहने लगा कि मैं आपके हिस्से का आम ले लूं। मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। नहीं नहीं मैं आपके हिस्से का ले लूं क्या? तो मैंने कहा नहीं सबको मिल रहा ना आपको क्या जरूरत है करके। नहीं नहीं मैं ले लेता हूँ ना आपके हिस्से का। तो मैंने कहा धर्मराजपुरी में मेरे हिस्से के 6 डंडे भी खाओगे क्या आप करके? तो एकदम ही चुप बैठ गया। तो मैंने बोला भाई बोलो क्या हो गया करके, 6 नहीं 4 ही खा लो। मैंने कहा कोई 2 तो खा लो। मैंने बोला चलो 2 डंडे खाना 6 आम खा लो। मैंने कहा तो काफी दिन तक बात ही नहीं कर रहा था मेरे साथ में। हम दूसरों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं, इसको क्या मिल रहा है। हर एक को जो मिलता है मुझे ऐसा लगता है मोर देन सफिशियंट मिलता है, चाहे आप यज्ञ में हो चाहे बाहर जो है, मोर देन सफिशियंट मिलता है। लेकिन हमारी एक मेंटेलिटी होती है ना, मैंने कहा ना लोभ की, हाँ स्टोर करने की है ऑलरेडी चीज हमारे पास, रखने के लिए जगह नहीं, अलमारियां भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी लेके जाएंगे और फिर कहेंगे बाबा दे रहा है बाबा दे रहा है। ये तो हमारा अधिकार है, अधिकार से बड़ी चीज होती है कर्तव्य। आपके पास जरूरी है जितना, जैसे जगदीश भाई के लिए बताते हैं कि जब वो शरीर छोड़ने वाले थे उनको पहले से पता था, उस समय उन्होंने कपड़े वगैरह सिलाने भी कम कर दिए थे उन्होंने काफी ऐसे। हाँ ऐसे लोगों को होता है कि आता है चीज उनके पास में तो वो बांट के पूरा कर देते हैं, लेकिन वो भी ऐसे लोगों को दान भी देना चाहिए कि जो जाके आपकी एडवर्टाइजमेंट ना करे किसी को कि मुझे ये उसने दिया जाओ आप भी उसके पास में। तो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि इनके पास बहुत है जाओ जाओ, ये पर्सनल अनुभव है मेरा। इसलिए हम देते हैं किसी को तो पहले बताते, भी किसी को बताना नहीं करके, भूल के भी नहीं बताना किसी को भी गलती से, क्योंकि उससे रिलेशन खराब होता है। लोगों को लगता है इनका इनके साथ ज्यादा अटैचमेंट है ना इसलिए इनको ही देते करके, ऐसे नहीं है करके। पांचों को कभी भी देखकर ही दान करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे, जैसे बताया कि माया जो है कंफ्यूज करती है हमेशा। एक जो लास्ट पॉइंट है राइट, मैं ही राइट हूं। लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं ही राइट हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, मुझे इनसे ज्यादा ज्ञान है, हम इनसे पहले आए हुए, जो भी हमको ज्यादा इनसे अनुभव है करके, तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं तो मैं ही राइट हूं। तो वो भी अगर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं ही राइट हूं, माना हम ये दिखाते हैं कि हमको उनसे ज्यादा पता है, या तो हमारे अंदर उनके प्रति ईर्ष्या है तो हम ये दिखाते हैं कि मैं ही राइट हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, या मैं जो कर रहा हूं वही होना चाहिए। जैसे बाबा ने, फिर हम वहां पे ये यूज करते हैं कि बाबा ने कहा ना कि मालिक बालक सो मालिक का एग्जाम्पल हम देना शुरू करते हैं, लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि जहां आपको झुकना है वहां पे आप बालक बन जाइए, जहां पे आपको सलाह देनी है कुछ करना है वहां पे आप मालिक बन के सलाह दीजिए, लेकिन उसके ऊपर अपना ये मत बताइए कि मैं ही जो कर रहा हूं मैं ही राइट हूं, या मैं जो कर रहा हूं मुझे ज्यादा अनुभव है मुझे सब कुछ पता है करके। जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि जब हम कंपनीज में जॉब करते थे तो हमारे बहुत सारे दूसरे सीनियर्स बड़े बड़े वो हमेशा एग्जाम्पल देते थे मुझे कि ये बाल जो है हमने धूप में सफेद नहीं किए हुए, तो मैं ये कहता था कि चश्मा भी धूप में घूम के नहीं पहना हुआ है मैंने ऐसे। इस तरह तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने देखे कि माया किस, और भी हो सकते हैं अगर आप चिंतन करेंगे, लेकिन ये सूक्ष्म पॉइंट्स है जो दिखाना कि माया कंफ्यूज करती है हमारी बुद्धि को। कि बाबा हमेशा कैसा निश्चय बुद्धि विजयंती, जो हमने दिव्य बुद्धि के इसमें भी देखा था। तो जैसे एक व्यक्ति होता है उसके पास ये होता है बकरी होती है, वो अपने बच्चे को बोलता है ये बकरी बेच के आओ, अच्छी मोटी ताजी बकरी होती है, तो चार जो ठग होते हैं चोर, वो देखते हैं ये बच्चा तो भोला भाला है, उसे लूट सकते हैं, तो वो प्लानिंग बनाते हैं। तो एक व्यक्ति मिलता है उस बच्चे को, पहले कहता है ये कुत्ते को कहाँ लेके जा रहे हो तुम करके, तो वो कहता है भाई ये कुत्ता नहीं है बकरी है। बोलता नहीं नहीं भाई ये कुत्ता है, आपको पता नहीं है, बोले शायद आप छोटे बच्चे हो, चलो कोई बात नहीं करके कुत्ता ही है, बोलता है। तो और आगे जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति मिलता है उसे, तो वो भी वही कहता है कि ये तुम कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो उठा के, तो वो बोलता नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है तो बकरी है, तो मैं बेचने जा रहा हूँ। बोले अरे ये बकरी नहीं है तो कुत्ता है, और इसके मुश्किल से तुमको कोई 50 रुपये भी नहीं देगा करके ऐसे। उसके पिताजी ने कहा होता है कि कम से कम 500 रुपये तो 400 से 500 के बीच में बेच के आना। तो फिर वो सोचता है ये भी कुत्ता बोल रहा है, ये क्या चक्कर है। फिर आगे जाता है तीसरा ठग मिलता है उसको, तो वो भी वही बोलता है कि भाई ये कुत्ते को कहाँ लेके जा रहे हो उठा के तुम ऐसे। तो फिर वो सोचता है तो कुछ लफड़ा लग रहा है, तीन लोग मिल गए, ये कुत्ता ही बोल रहे हैं। फिर आगे जाने के बाद चौथा मिलता है, तो बोलता है भाई ये कुत्ते को कहाँ लेके जा रहे, मेरे को मेरा कुत्ता मर गया है, मुझे नया चाहिए, तुम एक काम करो 50 रुपये में ये दे दो मुझे करके। तो व्यक्ति सोचता है ये सचमुच ये कुत्ता ही है ये करके ये बोल रहा है। तो बोलता कितने में है, तो डील हो जाती 50-60 रुपये में, तो बेच देता है उसको। तो इस तरह से ये है कि माया जो है हमारी बुद्धि को कन्फ्यूज करती है, उस तरह से फिर माया के आने के जो ये चोर गेट है, जैसे बना CID, तो माया के CID एजेंट्स है 008 जो है, अगर हम इन पर ध्यान, और भी जैसे बताया और भी हो सकते हैं, लेकिन हम जितना इन चीजों पर छोटे छोटे रूप में ध्यान देंगे, क्योंकि एक से दूसरी चीज कनेक्टेड होती है, दूसरे से तीसरी चीज कनेक्टेड होती है, जितना हम छोटी छोटी चीज पर ध्यान देंगे, तो जैसे बताया कि बाबा कहता है कि अंत में माया लेके जाएगी खींच के, तो माया खींच के ना लेके जाए, इसलिए जो सारे जो है हमारे चोर गेट है, जितना हम बंद करके रखेंगे माया को आने का उतना चांस नहीं मिलेगा। ओम शांति।